कल्प, रस्सी लेके आओ। तुम लोग उस तरफ से जाओ, तुम लोग पीछे से जाओ, जाओ जाओ मेरे पीछे आओ। जुबैर
सबर करो, तुमने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया?
हाँ, फिक्र मत करो, चलो आओ।
जाओ का क्या?
सबर करो, मैं जाके रस्सी फेंकता हूं, जैसे ही रस्सी फेंको तुम लोग ऊपर चढ़ जाना। होशियार रहना,
जाओ। खिलाया इनको जो इस तरह बेहोश पड़े
हैं। मैंने कहा था ना कि मेरा नाम सुअदेव है, और जी ने अपना काम अच्छी तरह किया है।
सारे सिक्के
उठो,
अमर कल कहां हो तुम लोग?
जल्दी आओ।
वाह वाह,
सोने की चमक ने तो तुम्हें दीवाना ही कर दिया है जुबैर। हाँ।
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने हाकिम के खजाने को लूटने की कोशिश की?
तुम्हारा क्या ख्याल था इसका कोई मालिक नहीं? हाँ।
जानते हो, अगर हाकिम को पता चल गया कि जुबैर लुटेरे ने खजाने पर हाथ डाला है तो वो तुम्हारा क्या हशर करेगा? इसकी सजा फांसी से कम नहीं।
तुम इतने बेवकूफ हो कि मेरी जाल में आसानी से फंस गए।
हम आपस में मामला कर लेते हैं।
क्या खूब, मामला भी करना जानते हो।
कहो, देखूं तुम्हारी पेशकश क्या है।
मुझे छोड़ दो और जो कुछ चाहो इस खजाने से ले लो और इसका इल्जाम मुझ पर लगा दो, ठीक है?
अबू सालब, तुम्हारा क्या ख्याल है?
कुछ गलत भी नहीं कह रहा।
लालच में ना आओ, हम पहले ही एक अच्छा मामला कर चुके हैं।
सही कह रहे हो।
अमर
जी मालिक।
ए खायन घटिया इंसान, किस कीमत पर, किस कीमत पर ऐसा किया?
अब इन बातों का वक्त नहीं, इसे कैद खाने में डाल दो।
गिरफ्तार कर लो इसे।
तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। क्या समझ रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, याद रखो, एक दिन अपने हाथों से तुम्हारा गला काट डालूंगा, समझे तुम?
अगर जिंदा रहोगे तो इसे सजा दोगे।
अमर, तुम्हें तुम्हारा नया वादा मुबारक हो।
मैं आपका मतलब नहीं समझा सरदार।
ज्यादा हैरान ना हो अहमक, मैं लुटेरों की सरदारी की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक बात याद रखना, हाकिम का हिस्सा ना भूल जाना।
जो हुक्म हो।
और हमारा भी।
आओ तो अपनी जगह जनाब।
हंसो नहीं, जाओ।
चलो चलो आगे बढ़ो।
बेहतर, कल
चलो।
तुम्हारा मंसूबा गलत भी नहीं था सामी।
चले।
तुम्हारे लिए शर्म की रात है जुबैर। कहां हाकिम का खजाना और कहां ये अंधेरी कोठली? कहां बेयाबानों का डाकू अपनी सरदारी पे फख्र करता, हाथ में तलवार लिए मुसाफिरों पे जुर्म ढाता, और अब यहां एक मुर्दा चूहे की तरह जाल में फंस गया। इसके पैरों को देखो, किस तरह जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे हाथ पांव खुलवा दूं? नहीं, लेकिन नहीं, एक शर्त पर। पहले झुको और मेरे पैरों को बोसा दो। क्या कहते हो, शर्त अच्छी है ना? खड़े क्यों हो? झुको। हराम खोर, कैद खाने में डाल दो इसे।
मेरा एतकाद है कि हर मौजूद चीज़ और हत्ता कि हर इंसान हासिल तासीर व तासुर कुदरत व तबीयत है। तबीयत की तौलीद भी दिगर मौजूदात की तरह कमियत व आदात के कानून के तहत होती है कि जिसका राज मादा के तादुली राबते पर गौर व फिक्र से कशफ हो सकता है। मौजूदात और अजसाम की तौलीद में तबीयत की तासीर को बतौर नज़री समझना मुमकिन है। तौलीद मादा को समझने के लिए मैं आपके सामने पांच नज़रियात बयान करता हूं जिससे समझने में आसानी होगी। नज़रिया अव्वल, कमियत और कैफियत के मुताबिकत और ज़मान व मकान की मुताबिकत की सूरत में मादा के अंदर हादसाती तौर पर तौलीद का अमल होता है। नज़रिया दोयम, कैफियत व कमियत के ज़ाहरी तजाद और ज़मान व मकान के इख्तलाफ की सूरत में मादा के अंदर तौलीद का अमल मरहला वार होता है। नज़रिया सोयम, کیفیت و حاکمیت کی مطابق اور زمان و مکان میں تضاد کی صورت میں مادہ کے اندر حادثاتی طور پر تولید کا عمل انجام پاتا ہے۔ نظریہ چہرم، کیفیت کی کمیت سے مخالفت اور زمان و مکان کی مطابقت کی صورت میں مادہ کے اندر حادثاتی طور پر تولید کا عمل انجام پاتا ہے۔ نظریہ پنجم، کیفیت و کمیت کی مخالفت کی صورت اور زمان و مکان کی مطابقت میں مادے کے اندر تولید کا عمل انجام پاتا ہے۔ خدا کی خلق کردہ موجودات اور انسان کی بنائی ہوئی اشیاء میں فرق یہ ہے کہ خدا کی خلقت میں چیز ایک دم مادے سے وجود میں آ جاتی ہے، جبکہ انسان کی بنائی ہوئی اشیاء مرحلہ بمرحلہ وجود اختیار کرتی ہیں۔ بس اسی بنا پر نظریہ اول، سویم اور چہرم، یہ تینوں نظریات خداوند تعالیٰ سے مربوط ہوتے ہیں، اور نظریہ دویم اور نظریہ پنجم تولید مصنوعی سے مربوط ہوتے ہیں۔ تولید مصنوعی تین چیزوں یعنی معدنی، نباتیات اور حیوانیات میں ممکن ہے، اور اس صورت میں انسان حیوانات اور نباتات میں ایسی چیزیں خلق کر سکتا ہے جو کہ ممکن ہے ابھی تک کائنات میں موجود نہ ہوں۔
قاضی القضات، دیکھو اب ہمارے جرات مندانہ اقدام کا وقت ہے۔
کیا میری خدمت گزاری میں کوئی کمی رہ گئی ہے جناب؟
نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ تم جانتے ہو شہر بصرہ اس خطرناک جادوگر کی وجہ سے خطرے میں ہے، اب کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنے علم و حکمت کی آڑ میں اپنے عزائم و افکار کی ترویج کرے، اور اب جب کہ وہ خاموشی کا ارادہ نہیں رکھتا اور چاہتا ہے کہ اپنے درس کی آڑ میں افکار علوی کو لوگوں میں پھیلائے، تو اس شہر کو اس کے شر سے پاک کرنا ہوگا۔
عالی جناب، اس کے افکار علوی کی وجہ سے
یا اس وجہ سے کہ اس نے زلفا کا دل چرایا ہے؟
میں نے کئی بار منع کیا ہے کہ میرے معاملے میں دخل اندازی مت کر، مکار بے حیا آدمی ہمیں صرف لوگوں کی فکر ہے، اگر اس کی چال بازیوں سے لوگ ہمارے مخالف ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟
آپ صحیح کہہ رہے ہیں مالک، ہمیں اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ اب جبکہ ہمیں اپنے مفاد میں اس کو قید کرنے کے لیے بہت سے بہانے ہمارے پاس موجود ہیں،
بس اب اسے اور مہلت مت دو اور اس کی گرفتاری کا حکم دو، عدالت میں لاؤ۔ ظاہر ہے کہ کیمیاگری اور جادوگری ایک بڑا جرم ہے، اور ہم قتل و غارت گری اور راہزنی کی اجازت کسی صورت نہیں دے سکتے، تو بس عدالت میں یہ کوشش کرنا کہ حق ہمارے ساتھ ہو۔ اچھی طرح سمجھ گئے؟
میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔
چلو جلدی چلو۔
Thank you.
आपको सलामत रखे जाबिर।
माफ कीजिएगा उनवान, मैं आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं था।
ये लीजिए।
आपका बेहद शुक्रिया।
आसमान हमेशा इंसान को रात के वक्त अपनी तरफ खींचता है। इंसान को समझ नहीं आता कि वो इस तारीकी से खौफ खाए या इन सितारों के नूर से मुनव्वर हो।
हाँ, आसमान भी रमूज और असरार से भरा हुआ है। इन सितारों की आसमानों में हरकत और हिकमत और मौजूदगी इंसान को हैरत में डाल देती है। सितारों की हरकत बहुत ज़्यादा अजीब और हैरतनाक है। इनमें से कुछ अपने मदार से बाहर नहीं जाते, जबकि दूसरे सितारे मुसलसल हरकत में रहते हैं, बिल्कुल उस चींटी की तरह जो पंचक्की के एक पत्थर पर हरकत कर रही हो। चींटी बाएं जानब हरकत कर रही होती है, जबकि पत्थर दाएं जानब। इस तरह चींटी एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ सिमतों में हरकत कर रही होती है। पहली वो हरकत जो पत्थर पर हो, जो कि खुद ब खुद हो रही है और उसे आगे बढ़ा रही होती है, लेकिन मजमूई तौर पर एक अजबारी हरकत के तहत पत्थर चींटी को उसकी हरकत के बरखिलाफ उल्टा घुमाता है। इस हरकत की हिकमत भी अजीब है ना।
इंशाल्लाह खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम्हारे इल्म में इजाफा करे। बेशक तुम्हारा इल्म सबके लिए चराग की मानिंद है।
खुदाए मुतलक की इस वसी कायनात में मेरे इल्म का नूर इन सितारों के नूर से बहुत कम है। मैं जितना भी इस कायनात के बारे में फिक्र करता हूँ, उतना ही अपनी कम इल्मी और जहल का एहसास होता है और अपने मौला जाफर इब्ने मोहम्मद से पूछे जाने वाले सवालात में इजाफा होता चला जाता है।
काश मेरी उम्र मुझे इतनी इजाज़त दे कि मैं एक बार फिर अपने मौला की ज़ियारत कर सकूँ।
इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
अब जबकि मैं उम्र के आखिरी दौराहे पर खड़ा हूँ और मौत दबे कदमों मेरी तरफ आ रही है और एक बहुत बड़ी फिक्र मेरी जान को खा रही है, बस मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे बाद क्या होगा।
तुम्हें कौन सी फिक्र है मेरे दोस्त?
जुल्फा।
जुल्फा, उसकी वजह से क्यों परेशान हो?
इसके लायक कोई मुनासिब रिश्ता ना मिलने की वजह से। और मेरे बाद जुल्फा तन्हा रह जाएगी।
जो परवरदिगार चाहेगा वही बेहतर होगा।
मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में उसका हाथ किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे दूं जिससे खुदा भी राजी हो और ऐसा कौन होगा जो इल्म और फजीलत में।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
आया आया।
इससे पहले कि दरवाजा तोड़ दे, दरवाजा खोल दो।
क्यों दरवाजा पीटे जा रहे हो? क्या बात है?
हटो, दूर हटो। देखो वो कहाँ है।
कौन कहाँ है? किसका पूछ रहे हो?
मैं पूछ रहा हूँ वो जादूगर कहाँ है।
कौन जादूगर? गोया तुम लोग नहीं जानते कि उनवान बसरी का घर है।
सलाम हो उनवाने ताजरे बुजुर्गे बसरा पर।
कैसा सलाम उबैद? तुम आधी रात के वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हो?
काजिल कज़ात ने इसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है।
किस ना करदा गुनाह के जुर्म में?
ये हुक्म काजी ने दिया है, मैं इस हुक्म का पाबंद हूँ।
वो मेरा मेहमान है और मैं हर किसी चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि उसे चोर डाकुओं की तरह गिरफ्तार करके ले जाओ यहाँ से।
मैंने कहा ना, ये हुक्म हुक्म काजी है और मैं काजी के हुक्म का पाबंद हूँ। अगर आपने इजाजत ना दी तो हम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। ढूंढो उसे।
हरगिज मैं इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मेरे घर में दाखिल होकर एक मुसलमान की इज्जत खराब करो। काजी अगर खुद अहले शराफत होता और अरबों की इज्जत के कानून की लिहाज रखता तो ऐसा हुक्म हरगिज ना देता।
जाओ ढूंढो उसे।
हरगिज।
इनसे तुम्हें क्या सरोकार है?
मैं यहां हूं।
देख क्या रहे हो, गिरफ्तार कर लो उसे।
इसकी जरूरत नहीं। अहले खानों को परेशान मत करें और मुझे एक लम्हा इजाजत दें ताकि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊं।
इसके साथ रहो।
जाबिर,
आप मुतमईन रहिए, मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं।
वो अपने इल्म और इस्तदलाल के जरिए मुझे और दूसरे शागिर्दों को कायल करने की कोशिश करता है ताकि इस तरह से अपना मकसद हासिल कर सके। और इसका मकसद इसके सिवा कुछ भी नहीं कि मुसलमान जवानों को बेदीन बना दे।
वो कैसे ये काम करता है?
जनाब आली, ये शख्स तबियात के इल्म के जरिए से ये साबित करने की कोशिश करता है कि इंसान भी खुदावंद ताला की तरह से खल्क करने की कुदरत रखता है।
अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।
ये झूठ बोल रहा है। ये सब जानते हैं कि जाबिर इब्ने अयान एक अजीम इंसान है और मैं खुद बहुत अच्छी तरह इन्हें जानता हूं।
इस जैसे जादूगर के लिए
तुम जैसे बूढ़े सादा शरीफ इंसान को फरेब देना क्या मुश्किल?
ये और क्या कहता है?
खुदा मुझे माफ करे, वो कहता है कि इंसान खुदा की खिलकत या कायनात को समझने के बाद इस काबिल हो सकता है कि खुदा की जगह हासिल कर सके, हत्ता के उन चीजों को भी खल्क कर सके कि जिन्हें खुदा भी खल्क नहीं कर सकता।
यानी दूसरे अल्फाज में, यह इंसान जो कि मखलूक खुदा है, खुदा से भी बरतर हो सकता है, और न सिर्फ बरतर बल्कि उससे भी बेहतर खल्क करने की सलाहियत रखता है।
हाँ, यही कह रहा था।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे याद नहीं पड़ता अभी तक किसी मुसलमान ने, या हत्ता के दूसरे मजाहिब या मसीहियों ने, ना यहूदियों ने इस तरह कुफर का दावा किया हो।
हाँ, ये जो तुम कह रहे हो ये कुफर है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
अगर ये कुफर नहीं फिर क्या है?
मेरा यही कहना है कि इंसान खुदा की मखलूक है और खुदावन ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया है कि इंसान जमीन पर अल्लाह का खलीफा है, और खुदा ने जो इंसान को अक्ल व शऊर की कुव्वत अता की है उसकी बदौलत वो अपनी तखलीक या कायनात की दूसरी मौजूदात के बारे में गौर व फिक्र करके उसकी खलकत के असरार व रमूज को कश्फ कर सकता है और उन्हें समझ कर खुदा की दी हुई अक्ल व फहम को बरूए कार ला कर नई नई चीजें खल्क कर सकता है, वो भी खास हालात में। और ये अम्र गौर तलब है कि अल्लाह ताला की रजा शामिल हो। तो इंसान फकत उस सूरत में कोई चीज खल्क कर सकता है कि जब वो चीज मुख्तलिफ मराहिल को तय करके एक शक्ल इख्तियार कर ले। लेकिन वो मौजूदात जो कि हादसाती तौर पर यकदम वजूद में आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार ही की ज़ात मुकद्दस का खासा है, और किसी भी सूरत में कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान का ताल्लुक आलम असगर से है और आलम अकबर की खसूसियात उसके अंदर पिन्हा हैं, और जिनको बरूए कार लाकर वो उमूर दुनिया के रमूज को समझ कर आलम असगर को उबूर करके आलम अकबर में कदम रख सकता है।
बस अपनी कुफ्रगोई बंद करो। हमने सुना है कि तुमने अपनी इन शैतानी बातों के जरिए मुसलमान नौजवानों के जहनों की सोचो फिक्र को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बहुत से दानिशमंद देखे हैं जो कि अपने इल्म और दानिश के गुरूर के नशे में गर्क थे, और गुरूर और तकब्बुर ने उनकी रूह को जकड़ रखा था, जो मुलहिद हो गए और खुदाए वादहु ला शरीक जो सूरज की तरह रोशन और वाज़े हकीकत है, और वो बदबख्त और नामुराद लोग उसके वजूद के ही मुनकिर हो गए। ये दिलों के वो अंधे हैं जिन्होंने माशरे को बातिल फिक्रों से तबाही और अंधेरों की तरफ धकेल दिया है। बैठ जाओ जवान, मेरी दुआ है खुदा तुम पर रहमत करे कि तुम्हारी बदौलत हकाइक हम पर वाजे हुए। लेकिन खुदा के इनकार के अलावा तुम्हारा एक और बड़ा गुनाह भी है। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि यह शख्स कीमियागर है और कीमियागरी जो कि जादूगरी ही की एक किस्म है और जो शरह मुकद्दस इस्लाम में हराम है।
कीमियागरी और दवासाजी ये दोनों उलूम तिब की दो शाखें हैं जो मवाद और अनासर का तज्जिया और तरकीब करती है और दूसरी इन तजर्बा और तरकीब के नतीजे पर बीमारों के लिए दवा तजवीज करती है। कीमियागरी और दवासाजी इन दोनों का जादूगरी से कोई ताल्लुक नहीं है। जादूगरी की बुनियाद फरेब और धोखे पर है। आप किस तरह दोनों उलूम को एक जैसा समझ सकते हैं?
खामोश! बीमारों की शिफा के लिए हमेशा हक ताला के हुजूर रुजू करना चाहिए, ना कि झूठे जादूगरों की तरफ।
ये क्या कह रहे हैं?
अगर काजी साहब इजाजत दें तो मैं इन उलूम को बेहतर तौर पर साबित कर सकता हूं ताकि जादूगरी और कीमियागरी का फर्क लोगों के लिए वाज़ और रोशन हो जाए। और अगर आपके दरमियान कोई दानिशमंद मौजूद हो तो मैं उसके साथ मनाजरे के लिए तैयार हूं। और अगर फिर भी आपने मेरे कलाम में जर्रा बराबर भी कुफ्र देखा तो जो आपका हुक्म होगा मुझे कबूल होगा।
खुदा गवाह है, खुदारा मैं तुम्हें जादूगरी की इस मुकद्दस जगह पर जहां मुसलमानों के हक इंसाफ के फैसले होते हैं इस हराम अमल की इजाजत कैसे दे सकता हूं ताकि तुम अपने मकरो फरेब के करतब दिखाकर लोगों का ईमान खराब करो। और क्या पता कि तुम मुझे ही अपने जादू के जरिए धोखा दे दो और खुदा की बारगाह में मुझे भी गुनाहगार करो।
जनाब काजी, ये एक दाना हकीम है जो के बीमारों के दर्द की दवा करते हैं। इनका काम जादूगरी से कोई रब्त नहीं रखता।
हाँ, सही कह रहा है।
सही बात, सही बात,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे
हैं। इन्हें अदालत का निजाम बर्बाद करने की इजाजत क्यों दे रहे हो?
खामोश कराओ इसे।
हया करो इंसान, जाबिर इल्म और दानिश की वजह से तमाम मुसलमानों में मशहूर है और उसने अपने आप को बीमारों के इलाज के लिए वक्फ कर रखा है और हम सब इसके इल्म और दानिश के न्याजमंद हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि इस पर जादूगरी और कुफर गोई की तोहमत लगा रहे हो? उसे अपनी बात साबित करने की इजाजत क्यों नहीं देते?
खामोश! क्या तुम चाहते हो कि मनसबे कजावत इन जैसे झूठे जादूगरों के हीले बहानों और मकरो फरेब का शिकार हो जाए? मैं बहसियत काजियुल कज़ाद शहर बसरा तुम्हें फांसी का हुक्म देता हूं।
ले जाओ इसे।
आपका यह हुक्म कौन से दीन और अकल के मुताबिक है?
मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि आप लोगों के सामने अपने आदिलाना हुक्म की वजाहत पेश करूं। मैं वो कह रहा हूं जो खुदा की रजा है और खुदा से उम्मीद करता हूं कि वो मेरा ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तामील हो।
क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे।
मुझे आपके फैसले पर एतराज है।
ले जाओ इसे।
इंसाफ करें।
चलो
रुक जाए।
चलो
इंसाफ करें।
ले जाओ।
इंसाफ करें।
ले जाओ। ले जाओ।
इंसाफ करें।
ले जाओ। ले जाओ।
परवरदिगार, तू अपने इस हकीर बंदे से राजी रहना। तेरा शुक्र कि तूने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने आज अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है।
शर्म कर काजी, शर्म कर, खुदा के अजाब से डर, वाए हो तुझ पर, शर्म कर काजी, कुछ तो
फैसला इंसाफ पे मबनी था। चले
अंदर जाओ। चलो एक तरफ हटो। चलो अंदर जाओ। चलो
बसरा में कदम रखते ही मेरी बदनसीबी का आगाज हो गया।
मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया जो तुम्हें बताऊं और तुम्हें वजाहत दूं।
पहले तो तुमने कारवान को मेरे चुंगल से छुड़ा लिया, मेरे उनवान के घर में बसेरा करके, और फिर उसकी बेटी को मुझसे दूर कर दिया तुमने। न जाने मुझसे ये कैसे हिमाकत सरजद हो गई कि मैं गिरफ्तार हो गया। अब न जाने तुम कौन सी मुसीबत में मुझे डालना चाहते हो, खुदा जाने।
ए मर्द, तुम मुतमईन रहो, और कारवान की रिहाई का हुक्म तो तुमने खुद दिया था, और उनवान के घर में मेहमान से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूं, और मेरा नहीं ख्याल कि
मेहमान। जब से उनवान और उसकी बेटी की नजर तुम पर पड़ी है, वो भूल गए कि कब से जुबैर जुल्फा का आशिक खासगार है।
आशिक जुल्फा, ये सुनकर खुशी हुई कि तुम भी इश्क वफा से सरोकार रखते हो।
तुम जुबैर को इस कदर शक्की उल्कल्प समझते हो कि जैसे वो लज्जत इश्क को जानते ही ना हो। हाँ मोहतरम हकीम, अगरचे मेरी शोहरत रहजनी से है, लेकिन मेरा दिल पाक और साफ है। अफसोस है कि हिकमत और इल्म और दानिश का दम भरने वाले रहजनी को जुर्म समझते हैं और राह इश्क दूसरों पर बंद करते हैं। अफसोस।
इश्क के भी कुछ उसूल हैं, अगर तुम उन पर अमल करो तो फिर राह का बंद होना मुमकिन नहीं।
इश्क उसूल रखता है, असल उसूल की बातें करके मुझे उलझाओ नहीं। मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि लफाजे के जरिए मुझे फरेब देना चाहते हो।
फरेब किस लिए?
मुझे क्या पता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस तरह मुझे इस लड़की से दूर कर दो तो तुम्हें जहमत करने की जरूरत। अब मेरी पहुंच ना सिर्फ उस लड़की बल्कि तमाम दुनिया से दूर है।
सब्र उम्मीदवारी दोनों आशिकी का हिस्सा है।
किस चीज की उम्मीद? जो फांसी का मुंतजर हो और जिंदगी के आखिरी अय्याम इस अंधेरी कोठरी में गुजार रहा हो, वो भला क्या उम्मीदवार होगा?
ये सुनकर खुशी हुई कि तुम भी फांसी की सजा के मुंतजर हो।
तुम यहां कैसे?
यह अहम नहीं, अहम यह है कि मैं खुदा के लुत्फ करम का उम्मीदवार हूं, और शायद खुदावन ताला कोई हल निकाल ले।
हिकमत और फलसफे ने तुम्हारी अकल पर पर्दे डाल दिए हैं। तुम्हारे हाथ बांध कर तुम्हें इस अंधेरी कोठरी में डाल दिया है कि तुम्हें दार पर चढ़ाएं, और इस पर तुम
दर हकीकत तमाम काम उसी के दस्त कुदरत में है। आओ सोचें किस तरह खुदा की रहमत हासिल की जा सकती है।
रहमत खुदा? हाँ रहमत खुदा।
یہ حقیقت ہے کہ ہماری یہ اعلیٰ روایت کی حامل حکومت آپ جیسے عظیم و گراں قدر قاضی القضات جو دانشمند ہیں، ان کے بغیر چلنا ممکن نہیں۔
آپ کا شکر گزار ہوں حاکم بزرگ۔
वाह आपने भी क्या खूब कहा, कीमियागरी भी जादूगरी की एक किस्म है।
आपके सिक्कों के लालच ने हाकिम बुजुर्ग इल्म और दानिश मेरे दिल में पैदा की, मेरा दिमाग रोशन हो गया।
कसावते ने अच्छा सिला भी चाहती है।
शुक्र गुजार हूँ।
तुम्हारा बाकी इनाम जुल्फा से हमारी शादी के बाद।
हाकिम बुजुर्ग आपने मुझे आजमा लिया है ना, आप इत्मीनान रखें, मैं आपका हर रास्ता साफ और तमाम मसाइल अच्छी तरह हल कर दूंगा।
बस एक बात का अच्छी तरह ख्याल रहे कि जाबिर और राशन जुबैर हर सूरत में एक ही दार पे चढ़ें।